हरे कृष्ण जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो इसके आज के अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं और अधिक मास में जो भी व्रत कोई करता है तो उसे कार्तिक मास से भी 16 गुना अधिक लाभ होता है। और अधिक मास का व्रत अगर कोई नहीं करता है तो उसके सारे पिछले व्रतों का फल नष्ट हो जाता है। अधिक मास में अगर कोई व्रत करता है तो सारे देवता उसके शरीर में निवास करते हैं, सारे धाम उसके शरीर में निवास करते हैं। और अधिक मास में अगर कोई अपराध करता है तो वो निरंतर काल तक नरक में रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बहुत आवश्यक है कि वो अधिक मास का व्रत छोटा सा क्यों ना हो लेकिन निश्चित रूप से करें। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक व्रत शुरू नहीं किया होगा, आज भी व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन व्रत अगर नहीं करेंगे तो ये मनुष्य जन्म का सारा कार्य फेल हो जाएगा। और अधिक मास में धाम का निवास बताया गया है, कुछ समय के लिए करो। अधिक मास में नदी का स्नान बताया गया है, श्रीमद् भागवत का श्रवण कथन बताया गया है, भगवान नाम का व्रत बताया गया है, वैष्णवों की सेवा, ब्राह्मण भोजन, भगवान के लिए भगवान के सेवा में या वैष्णवों के सेवा में दिया गया दान इस महीने में बहुत महत्वपूर्ण है। झूठ बोलना और क्रोध करना इस महीने में निषेध है। और किसी भी प्रकार का काम्य कृति यानी भौतिक इच्छाओं से लेकर किए गई कृति और खास करके गृहस्थों के लिए पुरुष स्त्री का संबंध इसमें वर्ज है पूरी तरह से। ब्रह्मचर्य का पालन करना इस महीने में बहुत जरूरी है। कोई भी शुभ कार्य जिसको हम शुभ कहते हैं, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, तो ऐसे कोई नई वस्तु खरीदी इस महीने में नहीं करनी चाहिए। अगर आप गहराई से सोचेंगे कि जो जो बताया गया है करने के लिए और जो जो बताया गया है नहीं करने के लिए, इसके पीछे एक ही सूत्र है, क्योंकि इस महीने में अनंत आध्यात्मिक लाभ मिलने की योजना बनाई गई है। इसे सारे भौतिक कार्य दूर रखने का काम दिया गया है और सारे आध्यात्मिक कार्य अधिक प्रमाण से, अधिक एकाग्रता से, अधिक भक्ति से करने के लिए कहा गया है।
और वैसे भी आप सब लोगों को यह बात ठीक से पता होना चाहिए कि इस महीने में अगर आप कोई पुण्य कार्य करेंगे उसका परिणाम जीरो होगा। करते रहिए, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, लेकिन लाभ जीरो होगा, क्योंकि आपके पुण्य कार्य और भगवान की भक्ति में अंतर होता है। पुण्य कार्य जैसे आपने अंधे को रास्ता क्रॉस करके दिया, भूखे को खाना खिलाया, वस्त्र नहीं उसको वस्त्र दिया, किसी गरीब विद्यार्थी को किताबें दी, सिर्फ भगवान का कोई संबंध नहीं है, एक करुणा है आपके मन में, आपने उसको मदद किया। दान वो भाग्यशाली होता है जो भगवान के संबंध में होता है, जैसे आपने भोजन खिलाया लेकिन वो प्रसादम खिलाया तो उसका लाभ मिलेगा आपको। भगवान के संबंधित अगर आप कुछ कार्य करेंगे पुण्य कार्य, तो वो दिव्य भक्तिपूर्ण कार्य बन जाता है और उसका लाभ मिलेगा आपको। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पुण्य कार्य का फल कब मिलता है, पुण्य कार्य का फल तब मिलता है जब किसी महीने में सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है, उसको संक्रांति कहते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति आती है और किसी महीने में मीन संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, मेष संक्रांति, हम लोग उसको मनाते नहीं इसलिए हमको पता नहीं है, लेकिन हर एक महीने में सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है और वहां पर महीना भर रुकता है। तो जैसे महीना बदलता है वो दूसरे राशि में प्रवेश करता है, जब वो प्रवेश करता है तभी जाकर मुहूर्त बनते हैं, और जब मुहूर्त बनते हैं तो आपके पुण्य कार्यों को फल मिलना आरंभ होता है। और दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से अधिक मास में सूरज किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता है। ये भी किसका इंडिकेशन है, ये भी उसी बात का इंडिकेशन है कि इसमें पुण्य कार्य नहीं करना है, केवल भगवत कार्य करना है। पुण्य कार्य आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा और भगवत कार्य आपको भगवान तक पहुंचाएगा, लंबी छलांग है वो। और पुण्य कार्य का स्वभाव होता है कि पुण्य कार्य काल के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। क्षणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, पुण्य कार्य जब एक समय समाप्त होता है ना, 100 रुपये होंगे तो 10 रुपये का आइसक्रीम खाया 90 बज गए, 20 रुपये की पाव भाजी खाई 70 बज गए, है ना, ऐसे करके 100 रुपये समाप्त हो जाएंगे। पाव भाजी का आनंद मिला, 10 रुपये का आइसक्रीम का आनंद मिला, आपने आनंद लिया, आनंद लेते ही पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। और जो पुण्य कार्य लेकर हम स्वर्ग में जाते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं भोगने के बाद। जैसे एसएल वर्ल्ड में जाएंगे आप 1000 रुपये का कूपन निकालेंगे और सब खेलेंगे, इधर खेलेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, वो गेंद में जाएंगे, पानी में जाएंगे, कुछ समय क्या होगा, बड़े कुछ समय बाद वो कूपन खत्म हो जाएंगे। फिर तो आपको बहुत सारा खेलना है, सब सामने है आपके, फूड स्टॉल भी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर जाके फिर कूपन खरीदना पड़ेगा। फिर अंदर आएंगे कुछ समय बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। एक समय आएगा आपकी जेब खाली हो जाएगी, घर में बहुत सारे पैसे हैं तो आपको घर में जाके ही फिर लाना पड़ेगा, और फिर हो सकता है घर के पैसे भी समाप्त हो जाएंगे, फिर तो बैंक में जाना पड़ेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है वो समाप्त होते ही जाएगा, उसकी एक शुरुआत है, उसका एक अंत है। इट्स एट द बिगिनिंग एंड एंड। तो ऐसे आनंद सुख लेने से आत्मा को सुख नहीं मिलता है, क्योंकि तो आत्मा को कैसा सुख चाहिए, परमानेंट। आत्मा चिरंतन सुख के लिए ढूंढ रहे हैं, और आप पुण्य कर्म करके उसको शुरुआत और अंत वाला सुख दे रहे हैं, तो आत्मा फिर भी तड़पता ही रहेगा, आगे जैसे खत्म हो गया आपका कूपन तो उसको दुख हो जाए, होने लगेगा, इतना देर एंजॉय किया अभी तो वो एंजॉय नहीं कर सकते। कल शादी में जलेबी खाया था, आज घर में सूखी रोटी खा रहे हैं, होता है ना ऐसे। सुख का प्रॉब्लम यही है, कल सुख लिया था तो उसको आज याद आती है, और वो कल नहीं मिलेगा तो दुख हो जाता है, तो सुख होगा तब तक थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन सुख नहीं होने से दुख होना आरंभ हो जाता है। इसलिए हमको भगवत कार्य करना है, और वो कार्य करने के लिए महीना दिया गया है। लोगों के मन में ये जानकारी नहीं है, वो सोचते हैं बहुत पुण्य करना चाहिए, जमाई को बुलाना चाहिए, उसको सोने का गहना देना चाहिए, उसको वो क्या बोलते हैं पोरस यानी छेद वाला भोजन देना चाहिए, मैसूर पाक अनार से ऐसे छेद वाला देना चाहिए, 33 देना चाहिए, लेकिन उसमें एक बात भूल जाते हैं, वो इन ब्रैकेट लिखा हुआ है वो, तो जमाई भक्त होना चाहिए, और भक्त होगा और साथ में ब्राह्मण दीक्षा भी लिया होगा तो और अच्छा, तो ब्राह्मण दीक्षा वाला जमाई होगा, उसने आपको दान दिया इस महीने में बुलाकर घर पे, तो वो आपको सीधे गौलोक धाम तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपको पूरा पता नहीं है, आधा नॉलेज है, सब कुछ करके भी सब फेल हो जाएगा, आपका सोना भी गया, 33 मिठाई भी गई और कुछ नहीं मिला आपको। इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे पहला कदम क्या है, श्रद्धा। दूसरा कदम क्या है, नॉलेज। श्रद्धा के साथ अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपकी भक्ति भी उत्तम भक्ति हो जाएगी, और श्रद्धा के और ज्ञान के बिना आप भक्ति भी करोगे तो कनिष्ठ भक्ति कहलाई जाएगी। हर चीज में टेक्निकलिटी है, आपको पता हो या ना पता हो क्या करें उसको। इसलिए पहले नॉलेज प्राप्त करना जरूरी है। आपके बच्चे को MBBS में एडमिशन चाहिए तो कितना कॉम्प्लिकेशन है आजकल, हमारे जैसा नहीं है, हमारे जमाने में इतना सिंपल था। अभी किसी बच्चे को जाना है तो उसको 9 से ही प्रिपेयर करना पड़ता है, नॉलेज प्राप्त करना पड़ता है, क्या किधर क्या ढूंढना है, कहां पर अप्लाई करना है, कौन से एग्जाम, उसके लिए कौन सा क्लास, उसके लिए कौन सी किताब, इतना सारा प्लानिंग करना पड़ता है। और वो आपको पता ही नहीं है तो डॉक्टर बन सकते क्या आप? नहीं बन सकते। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स है उसके अंदर, हर कदम आपको पता होना चाहिए क्या करना है। वैसे ही अधिक मास आ गया, आपको पुण्य दान पुण्य करना चाहिए, नहीं होगा लाभ आपको उसका। और एक चीज है उसके अंदर कि मेरे पाप धुल जाएंगे, ये सोचकर भी नहीं करना है आपको, तो उतना ही होगा। फिर आपको करना है इस महीने में केवल एक चीज के लिए सब काम करना है, इतना आपको समझ में आया ना, तो आपका अधिक मास सफल है। कौन सी चीज है वो? जो भी कार्य करना है भगवान के संतुष्टि के लिए ही करना है। गुरुदेव भगवान ये दोनों के संतुष्टि के लिए जो कार्य है वही करना है। फिर आप नदी में भी स्नान करोगे तो उनके लिए करना है, दान करोगे भी तो उनके नाम से करना है, कथा सुनोगे तो उनकी कथा सुनना है, जो भी करोगे आप उनके लिए करना है, व्रत करोगे तो भी उनके लिए करना है कि मैंने अभी इस महीने में मिठाई खाना छोड़ दिया है, ये व्रत भी होगा तो उनके आनंद के लिए करना है। वो अभी बहुत सारा एम उसके अंदर होता है छुपा हुआ, वजन कम करना भी है, डायबिटीज भी है, बहुत सारा अंदर का अपना खुद का पर्पज है, लेकिन करना आपको उनको संतुष्ट करने के लिए। शुगर कम हो गया तो बोनस बेनिफिट मिल गया आपको, वजन कम हो गया तो और भी अच्छा है, लेकिन वजन कम करने के लिए इस महीने में व्रत नहीं करना है। आप लोग हंस रहे हो लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। अगर ये मन में आपके विचार पड़े हुए हैं कि भाई चलो अधिक मास में 2-3 काम एक साथ में कर लेते, नहीं, एक ही काम करने के लिए करना है, बाकी जो बेनिफिट मिलता है वो मिलते रहने दो, प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज बहुत जरूरी है, और नॉलेज केवल मनुष्य को ही मिल सकता है ना, कुत्ता बिल्ली को ज्ञान नहीं दे सकते आप। इसलिए हमें ज्ञान के साथ में ये व्रत करना चाहिए, और जितने भी व्रत बताए गए हैं, जितने भी व्रत बताए गए वो सारे व्रत ना एक चीज में एक चीज करने से पूरे हो जाते। तो कौन सी चीज है बताओ? आपका जप का नियम है, आपने जप करने का नियम लिया, आपने समझा कि मैं भी नासिक में जाऊंगा, गोदावरी में स्नान करूंगा, फिर मैं मंदिर में दान दूंगा, फिर मैं वृंदावन जाऊंगा, फिर मैं भागवत का एक श्लोक पढ़ूंगा, फिर भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा, फिर मैं मंदिर में दान दूंगा, ऐसे बहुत सारे है ना, जमीन पे सोऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये सारे व्रत एक चीज में फुलफिल हो जाते हैं, वो है हरि कथा श्रवण करने से। क्योंकि हरि कथा श्रवण करने से क्या होता है, एक तो सारे तीर्थ प्रकट हो जाते हैं, सारे 18 पुराण 108 उपनिषद उसमें प्रकट हो जाते हैं, व्यक्ति रूप में बैठे आपके बीच में, आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन प्रकट है, सारे साधु प्रकट हो जाते हैं जब हरि कथा होती है, सारे तीर्थ प्रकट होते हैं, तो आपको जो जो व्रत करना है वो एक साथ प्रकट हो जाता है सब कुछ। आप अभी टिकट निकाल के नासिक जाएंगे तो आप एक ही जगह पर हो, नासिक में हो और गोदावरी में हो, उस समय आपको बोलेंगे कि मुझे अभी इस समय पे गंगा जी में भी रहना है उत्तरकाशी वाले, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, और वहां जाएंगे तो केवल एक गंगा मिलेगी, मंदाकिनी गंगा मिलेगी, या तो अलकनंदा गंगा मिलेगी, या तो भागीरथी गंगा मिलेगी, तो गणेश गंगा मिलेगी, या तो अस्सी गंगा मिलेगी, एक कुछ मिलेगा आपको। लेकिन आपको सारी नदियों में स्नान करना है तो क्या करना है, वो हरि कथा में आके बैठना है, हरि कथा में बैठना और हरि कथा ध्यान से सुनना ना सोते हुए, ये भी बहुत जरूरी है, ब्रैकेट में लिखा है हरि कथा ध्यान से सुनना मतलब सारी नदियों में एक ही साथ स्नान करना, सारे तीर्थों का धामों का एक ही साथ दर्शन करना, और सारे व्रत एक जगह पर पूरे हो जाते हैं, वो है हरि कथा। क्योंकि हरि कथा साक्षात हरि है, हरि कथा और हरि में कोई अंतर नहीं है, हरि कथा हरि से भी अधिक दयालु है, नाम रूप लीला धाम के भगवान की चार चीजें, भगवान से भी दयालु है, भगवान दयालु बहुत सारे अनंत दयालु है, क्योंकि उनसे भी ज्यादा दयालु उनकी कथा है, उनसे भी ज्यादा दयालु उनका नाम है, धाम है और लीला है। तो इसमें नाम लेने में हम सबको बहुत कष्ट हो सकता है, हम लेते हैं रोज, कोशिश करना है और लेना भी है, लेकिन नाम लेने में नींद आ सकती है, उत्साह नहीं हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, या अटेंशन नहीं हो सकता है, या कभी सुबह कर रहे हैं कभी शाम में कर रहे हैं, कभी उत्साह है कभी नहीं है। धाम में जाने के लिए टाइम मिलना चाहिए, साल में एक बार जा सकते हैं, रोज जा सकते नहीं है, और भगवान के विग्रह को रोज सेवा घर में कर सकते हैं। लेकिन हरि कथा ऐसी है कि आपको वो उसमें मग्न कराएगी, यू विल गेट एंगेज्ड और मग्न हो सकते हैं उसके अंदर आप। हरि नाम में और हरि कथा में अंतर, हरि कथा में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, हरि नाम में जब करने के लिए और रुचि आएगी तब आपको आनंद आएगा, लेकिन हरि कथा में कनिष्ठ अवस्था में भी आनंद आ सकता है आपको, तो भक्त नहीं है वो भी कथा सुन रहा है तो भी उसको आनंद आ सकता है, हो जाए आपको। हम लोग कुछ भेद नहीं कर रहे उसके अंदर, अरे बता रहे हैं कि लेने वाले की कैपेसिटी को देखकर हरि कथा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। नए आदमी को अगर आपको बताना है आप शरीर नहीं हो, हाँ दे नोस्ती बता दे, बोलेगा बस करो, लेकिन एक कहानी बताएंगे राम की और लक्ष्मण की सीता की, तुरंत आनंद आएगा उनको। तो रुचि के हिसाब से कथा आसान है मन लगाने के लिए, तो कथा सुनने से हो सकता है मन के पटल पे पूरा आपको ड्रामा नजर आएगा, मूवी नजर आएगा पूरा, हो सकता है, लेकिन नाम लेने से भी वो मूवी प्रकट होता है, लेकिन बहुत टाइम के बाद, समझ आपको है, नाम लेने से भी आगे आपको लीला का दर्शन होगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा तपस्या, शुद्धिकरण, प्रगति, कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर एक दिन फिर वो आपके मन में स्वयं स्फूर्त लीला का दर्शन होगा आपको। तो फिर वो लीला श्रवण करेंगे तो अभी क्या भी आपके मन के पटल पर दर्शन होगा भगवान का, तो ये रहस्य है उसका। और हरि लीला जब आप सुनते हैं ना, तत्क्षण आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो, कितना भी दुख होगा आपको, अगर आप इतने बड़े दुख में विफलता में एकदम मन ग्रस्त है आपका, दुखी है और कथा में आकर बैठ जाते हैं और सुनते कथा, तो आपको कम से कम उतने समय के लिए क्यों ना हो, आपका सारा दुख आपको लगेगा किधर था वो, मैं भूल गई सब कुछ ऐसा लगेगा आपको। तो इसलिए जो व्यक्ति शराबी भी हो, व्यभिचारी हो, मांसाहारी हो, पापी हो, झूठ बोलने वाला हो, लुटेरा हो, वो भी कथा में बैठेगा तो उसके दुर्भाग्य को दुर्भाग्य नष्ट होकर उसके भाग्य का उदय होगा। इतनी कथा पावरफुल है। कथा आपके जीवन के दुखों को तत्काल नष्ट कर सकती है। इसलिए कभी दुख होता है हमारे जीवन में तो आप ही भूलना मत, उस समय दुखों के बारे में चर्चा और चर्चा और चर्चा करने के बदले में आपको कथा की ओर तुरंत मुड़ना चाहिए। तुरंत भागवत उठाकर कथा पढ़नी चाहिए, तुरंत रामायण उठाकर कथा पढ़नी चाहिए, या पढ़ने में भी बोर होता है तो मन नहीं लग रहा है तो सुनना चाहिए, कोई कथा रिकॉर्ड किया हुआ है उसको सुनना चाहिए। और बेस्ट यह है, अभी आजकल लोग देखते ना ट्रेन में स्टेशन पे झगड़े बहुत कम हो गए, मालूम है क्यों? सब लोग कान में लगाकर मग्न है, तो मतलब वो जो नित्य श्रवण करने की जो जरूरत थी वो अपने आप पूरी होते नजर आ रही है। अभी खाली श्रवण का विषय बदलना है बस। अगर वो लोग दिन रात 1 करोड़ गाने मोबाइल के अंदर फिट है, दिन रात सुन रहे हो उसको, खत्म ही नहीं हो रहे हो। अगर आप 1 करोड़ कथाएं डाल देंगे मोबाइल के अंदर तो खत्म ही नहीं होगी वो, दिन रात सुनते रहो, खाना बनाते वक्त, उठते वक्त, नीचते वक्त, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, रिक्शा में खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं किसी का, बाहर किसी का इंटरव्यू चल रहा है उसके पहले वेट कर रहे हैं, किधर भी वेट कर रहे हैं समझो आप, रेलवे के टिकट के लाइन में खड़े हैं, वो तो लगे रहते ना उसको, तो सुनाई भी नहीं पड़ता है, ये आगे बढ़ो और उधर ही खड़ा है सुन रहे हैं। तो वो भी आप कर सकते हो, आपके मोबाइल में तुरंत उसको फीड कर दीजिए कथाएं को और कथा सुनते रहो, एक बार नहीं दो बार सुनो, तीन बार सुनो, चार बार सुनो, तो ना आनंद आएगा आपको। और दूसरी बात यह कि वो सुनते रहेंगे तो माया आपको छुएगी भी नहीं, मन में गलत विचार भी नहीं आएंगे, फ्री रहेंगे तो यहां वहां देखेंगे, कुछ अट्रैक्टिव चीज देखेंगे, लेकिन ऐसे आपका अगर कथा श्रवण में आपको आनंद आ गया ना तो आप किधर भी देखेंगे नहीं, कोई भी चीज आपको ललचाएगी नहीं, अच्छी बुरी आपका ध्यान उसमें विचलित नहीं होगा। इसलिए सब लोग विचार करो इस बात पर। और पीछे जो लड़के बैठे हुए हैं उनको अभी कथा सुनना आरंभ करना चाहिए, नहीं तो इधर आके फायदा क्या है, बाहर खेलना ही अच्छा है। अभी आपके लिए बहुत आनंद वाली कथाएं शुरू हो रही है, अभी प्रवचन अभी खत्म हो गया, अभी कथा शुरू होने वाली है, और वो कथा शुरू होने से अनंत लाभ आत्मा के स्तर पर होगा। सबसे पहले हम गणेश जी के मंदिर में बैठे हैं तो गणेश जी के बारे में बताएंगे। भगवान के वृंदावन में मानंद प्रभु कम कम, भगवान के वृंदावन में 12 वन है, उसमें सबसे प्रिय भगवान को वृंदावन है। और नेक्स्ट वृंदावन सबसे पसंद कौन सा वन है भगवान को? वो 12 वन में नहीं आता है, वो 137 वन में आता है, 137 वन में वो भी आता है। वो कैसा है ना, वन उपवन अधिवन ऐसे प्रकार है उसके, प्रतिवन, वन अधिवन प्रतिवन उपवन ऐसे 4-5 प्रकार है उसके, उसमें आता है वो। ये केवल वन वाले कैटेगरी में 12 वन भगवान को बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय उसमें वृंदावन है। और सबसे नंबर 2 वाला प्रिय जो है उसको प्रति वृंदावन भी कहते हैं, वो कौन सा है? काम्य वन। ब्रज में ऐसी कहावत है, काम बन जाए तो काम बन जाए, मतलब क्या हुआ? काम बन जाए मतलब काम वन में आप जाएंगे तो काम बन जाए, सारे काम खत्म हो जाएंगे आपके। और काम के कई अर्थ हैं, काम का एक अर्थ है मटेरियल डिजायर, वो भी पूरे हो जाएंगे। काम का एक अर्थ है भगवान के लिए हो तो रखी हुई इच्छाएं, वो भी पूरे हो जाएंगे। काम का एक अर्थ है सेक्स डिजायर, तो वो भी नष्ट हो जाएगा, सारे काम बन जाएंगे आपके। और एक काम का अर्थ ये भी है लक्ष्य, एम गोल, उसको भी काम कहते हैं, तो वो भी प्राप्त हो जाएगा आपको। ऐसा काम्य वन है, इतना सुंदर है काम्य वन, बहुत सुंदर, और उतना भीड़ भी नहीं उधर, लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काम्यवन में भगवान की अधिकतर गौचारण लीला और श्रृंगार लीला हुई है, अधिकतर सब लीलाएं हुई है, लेकिन दोनों का प्रधानता है उसके अंदर। तो उसमें एक जगह है जहां पर आज वृंदा देवी का मंदिर है, और उसकी कथा आप जानते हैं कि जब भगवान अभी कलयुग के समय पर जब निकले थे वहां से, तो गोविंद देव वृंदावन छोड़ के राधा कुंड आए, राधा कुंड छोड़ के फिर काम्य वन आए, और गोविंद देव वहां से निकले जयपुर जाने के लिए, तो क्या हुआ? तो उस समय वृंदा देवी ने बोला कि आप तो जगतनाथ हो, विश्वनाथ हो, मैं तो वृंदावन की देवी हूं, वृंदा देवी, तो मैं यही रहूंगी, आप जाइए। तो वृंदा देवी जो थी ओरिजिनल, वो वही रह गई, और गोविंद देव जी जयपुर चले गए। तो जहां पर गोविंद देव का मंदिर है, जहां पर आज गोविंद देव विराजमान है प्रतिभू मूर्ति, वो जगह पर चतुर्भुज विष्णु और विरजा देवी एंड लक्ष्मी देवी, इनका विवाह हुआ था। आज भी चतुर्भुज भगवान विष्णु उधर निवास करते हैं, विरजा देवी लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी के रूप में वहां निवास करती हैं। और वहां पर जब शादी हुई थी तो ब्रह्मा जी ने उनके दोनों के चरण धोए थे, और वो जल जो इकट्ठा हुआ था उसका नाम है चरणामृत कुंड, वो भी उधर ही है पास में। काम्यवन में क्या नहीं है? काम्यवन में परशुराम ने बनाए हुए 9 कुंड है, काम्यवन में धर्मराज कुंड है जहां पर यक्ष ने भगवान धर्मराज को प्रश्न किए थे, काम्यवन में पांडवों का कुटी है जहां पर पांडवों ने काम्यवन में वनवास का कुछ समय बिताया था, काम्यवन में आदि बद्री और केदार प्रकट हुए हैं, काम्यवन में गया प्रकट हुआ है, काम्यवन में रामेश्वर सेतु बंद और श्रीलंका प्रकट हुए हैं, काम्यवन में बहुत सारे धाम प्रकट हुए। मतलब वो वृंदावन धाम ब्रजभूमि का आश्रय ग्रहण करने के लिए काम्यवन प्रकट किए भगवान ने, उनको सबको आश्रय दिया है, और सब धाम जो व्यक्ति हैं वो वहां पर आकर भजन करते हैं, अपना शक्ति प्राप्त करते हैं और अपनी जगह पर सेवा करते हैं, लेकिन वृंदावन में ब्रजभूमि में भी निवास करते हैं। तो ऐसे काम्यवन में उसके पहले एक बार बलि महाराज जो थे ना भाम बलि, उन्होंने कई बार देवताओं पर हमला किया है, कई बार परास्त किया है, एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार। एक बार तो मर भी गए थे, देवताओं ने मार दिया था उनको, लेकिन शुक्राचार्य ने उनको जिंदा कर दिया, वापस संजीवनी पिलाते लोगों को, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे वापस कैसे आ गया, तो मर गया था, हमने मार दिया था उसको। नहीं, शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी है, वो दे के सबको जीवित किया उसने, फिर बहुत सारे यज्ञ किए, ब्राह्मणों को आशीर्वाद लिया, फिर आक्रमण किया। ऐसे एक बार आक्रमण किया तो देवताओं को ऐसा हाहाकार मचा दिया, सबको भगा दिया, सब लोग इतने डर गए इस समय, इतना तेज जैसे कि हजारों सूर्य का तेज लेकर ब्राह्मणों को आशीर्वाद प्राप्त करके बलि आक्रमण करने को आए, उसका तेज देखे देवता लोग भाग गए। ये तेज हम लोग सहन नहीं कर सकते, इतना शास्त्र तेज। तो बृहस्पति ने बताया कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया उसने, बहुत सेवा किया ब्राह्मणों का, इसलिए वो तेज लेकर आया, ये समय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे कई घटनाएं भागवत में भी आती है, लेकिन एक प्रसंग में क्या हुआ, युद्ध हुआ उनका, और युद्ध होकर ना बलि महाराज ने ना सबको ऐसा खदेड़ दिया कि सब लोग भाग गए, देवता लोग भाग के फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु के पास जाओ, विष्णु के पास गए तो विष्णु ने उनको कहा कि इस बार आप क्या करो, श्री गणेश जी को आह्वान करो, उनकी स्तुति करो, पूजा करो, उनको प्रसन्न करो, उनको बोलो कि हम मदद करो। गणेश जी बड़े विशेष देवता है भगवान के, परम शुद्ध भक्त है भगवान के, अनंत गुणों से सुशोभित हैं और शुद्ध भक्त है भगवान के। परम वैष्णव शंकर जी के पुत्र हैं, अन्नपूर्णा जी पार्वती जी के पुत्र हैं, कार्तिकेय के छोटे भाई हैं और अनंत करोड़ देवताओं में से कुछ गिने चुने जो महान देवताएं हैं, जो पूर्णतः ज्ञानी हैं, भगवान शरणागत हैं, भगवान से शक्त्यावेशित हैं, वो सारे देवताओं में से एक गणेश जी है। नृत्य में बहुत कुशल है, युद्ध कौशल में कुशल है। तो उन्होंने फिर देवताओं ने उनकी शरण लिया, उनको प्रसन्न किया। फिर गणेश जी ने ऐसा युद्ध किया कि बलि महाराज और सारे दैत्यों को बेहोश कर दिया, और बहुत दिन तक बलि महाराज और देवता लोग बेहोश ही रहे। इतना घनघोर युद्ध किया गणेश जी ने उनके नेतृत्व में सेनापति बनकर, और जब होश में आए ना बलि महाराज और दैत्य लोग तो वो उठकर भाग गए, दोबारा युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं होती। इस तरह से देवता लोग कुछ समय के लिए हो क्यों ना हो शांत हो गए। उस समय चतुर्भुज विष्णु भगवान ने विरजा देवी के साथ में उनको दर्शन दिया और कहा कि आप काम में वन में चिरंतन निवास कर सकते हो, उनको गिफ्ट दिया, नाउ यू कैन स्टे इन काम में वन। तो इसलिए काम्य वन में श्री गणेश जी का चिरंतन निवास है भगवान की कृपा से, और केवल उनके माता पिता को निवास का आदेश है, केवल काम्य वन में नहीं, शंकर जी और पार्वती जी को पूरे ब्रज में कहीं भी चिरंतन निवास का भाग्य प्राप्त है। इसलिए हर जगह पर शिव जी है ना, कामेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव मथुरा में है, गोपेश्वर महादेव वृंदावन में है, चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में है, नंदीश्वर महादेव नंदगांव में है, और चिंतारण महादेव और अनंत नाम है उनके, सब जगह उनका निवास है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी का भी निवास है, नंदीबंदी देवी के रूप में है, संकेत देवी के रूप में है, हाँ कितने सारे स्थान है, प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक स्थान है जहां पर लीलाएं हैं उनकी। नंदीबंदी देवी नाम का एक स्थान है वृंदावन नाम में, उनके चरणों से शुद्ध घी निरंतर बहते रहता है, पुजारी लोग इकट्ठा कर करके उसको दीपक जलाते हैं, उसके अंदर उनके चरणों से बहते रहता है, ऐसे स्लोली बहते रहता है प्योर घी, जाके देखना चाहिए आपको विश्वास करने के लिए, ऐसे चमत्कारिक है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पार्वती देवी और शंकर भगवान ने मिलकर त्रैमासिक व्रत किया था, उसके फल स्वरूप भगवान राधा और कृष्ण ने उनको प्रकट होकर दर्शन दिया था और ये वरदान दिया था कि आप चिरंतन ब्रज में निवास कर सकते हैं। उसके बाद में एक है हनुमान जी, उनको भी ब्रज में निवास करने का अधिकार है, उसके अलावा किसी भी देवता को ब्रज में रहने का अधिकार नहीं है। वो सुबह और शाम से पहले जाना है, उनको नाइट स्टे का इंतजाम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग रात को भी रहते हैं उधर जाके, हम लोग प्रसाद भी खाते हैं भगवान का महाप्रसाद, लेकिन देवताओं को भगवान का प्रसाद भी दुर्लभ है, प्राप्त नहीं होता है, मनुष्य को प्राप्त होता है। और देवताओं के जीवन का और एक बताता हूं, बात निकली है तो हमको लगता है कि देवता को लोग में जाकर रहना चाहिए, लेकिन देवता लोग निरंतर चिंता में रहते हैं क्योंकि दैत्य लोग दानव लोग हमेशा अटैक करते रहते हैं उनके ऊपर नीचे के लोग से, और कभी कभी जीत जाते हैं और देवताओं को भागना पड़ता है। तो ये मत समझना कि देवताओं के लोग जाकर आनंद नहीं मिलेगा आपको, नहीं, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी स्त्रियां मिलेगी, लेकिन टेंशन बना रहता है हमेशा, जो मिला है वो निकल जाएगा हाथ से तो कैसे होगा। कितनी बार इंद्र जो है भागकर गुफा में छुप छुप के रहते हैं, फिर वामन देव अवतार लेते हैं, कितनी बार बलि महाराज जैसे दैत्य आते हैं उनको हरा देते हैं, हिरण्यकश्यप आया हरा दिया, हिरण्याक्ष आया पूरा हरा दिया, बलि आया हरा दिया, रावण आया सबको थर थर कांप करके नव ग्रहों को पैर के नीचे रखा, सब देवताओं को पानी भरने को दिया। पता है आपको, रावण ने सभी देवताओं को घर में सब्जी काटना, पानी भरना और लादी पोंछना और खाना परोसना और गेट कीपर, ऐसा एकदम घिटोला काम करने लगा दिया था। नौ ग्रहों को उल्टा सुलाया था सबके, उसकी सीढ़ी बनाकर उस पर पांव रखकर जाता था वो, तो उस समय किधर गए थे पुण्य? जो बनाकर जो कमाकर आप लोग देवता बने थे वो पुण्य किधर गए उस समय? उधर खत्म हो जाते बीच में, राक्षस का आतंक हो गया तो पुण्य पिण्य कुछ काम नहीं करते, फिर सब रो रहे हैं देवता, राजा कर रो रो के छुप छुप के ब्रह्मा को मिल रहे हैं। फिर ब्रह्मा कैसे भी करके भगवान हरि से उनकी मुलाकात कर देते हैं, फिर बोलते डोंट वरी मैं आ रहा हूं, अभी चार अवतार में आऊंगा। और फिर वो जब तक रावण का वध नहीं हुआ तब तक वो टेंशन में ही थे, जब रावण का वध हुआ तो पुष्पवृष्टि हुई और वापस जाके बैठ गया अपने सीट पे। रावण कितना समय रहा दुनिया में बताओ? कितने हजारों साल रहा रावण, उतने हजारों साल ये लोग भटक रहे थे ऐसे, तो क्या फायदा है देवता बन के बताओ? उर्वशी भी है, रंभा भी है, मेनका भी है, अरे कभी मूड किधर है उनको भोगने का? कुछ है ही नहीं, रहने को नहीं ठिकान नहीं है, छुप छुप के दवा के रहना पड़ता है डर डर के। इसलिए देवता बनने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो कि भगवत धाम चले जाए। वो टेंशन कौन लेगा बार बार, ऊपर जाना नीचे आना फिर वापस कमाना, ऊपर जाना फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना नीचे आना, कितना तकलीफ है उसके अंदर। एक ही बार ऐसा काम करो तो सीधे भगवत धाम पहुंच जाओगे, भगवान को प्रसन्न करो। इधर उधर शॉपिंग मत करो, एक ही दुकान में जाओ, ऑल इन वन शॉप, सब्जी के लिए यहां पर, कपड़े के लिए उधर, गाड़ी के लिए उधर, ऐसा मत जाओ, एक ही दुकान में जाओ और वो दुकान है भगवान हरि का। उधर ही सब अपना जो भी करना है सबमिट करना है, क्या करना है, कोर्स करना है, व्रत करना है, एक ही जगह करो। उसी जगह का लाभ जो है ना वो चिरंतन लाभ है, वो आपको बार बार यहां वहां भटकाएगा नहीं। हमको भटकने का टाइम भी नहीं है क्योंकि आगे बाकी मनुष्य बनेगा कौन गारंटी दी आपको? भ्रम में मत रहो कि अगला जीवन में मनुष्य बनोगे। वो बिचारे थे ना, वो क्या नाम था उनका, राजा भरत, भरत महाराज थे ना, वो सब कुछ छोड़ के त्याग करके जंगल में गए थे वो, और कहते हैं कि इतनी अच्छी भाव अवस्था में पहुंच गए थे वो, ऐसे कहते हैं कि इतने से भगवान से दूर थे वो, बस इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गए थे। अरे उधर हिरण बीच में आ गया, ऐसी अवस्था में इतना डिफिकल्ट नहीं था उनके लिए, लेकिन क्या करें, दिल आ गया हिरण पे, सारा भजन छूट गया। इतना सारा त्याग करके इतना भगवान के पास पहुंचने के बाद में लास्ट एग्जाम थी उनकी, वो फंस गए उधर और हिरण बन के वापस आना पड़ा उनको। उनको भी गारंटी नहीं अभी कि मनुष्य बनू क्या बनू, हिरण बन के आए, एक जन्म हिरण का बिताया, फिर वापस जड़ भारत बने वो। मतलब एक लाइफ का काम था, तीन लाइफ में डिवाइड हो गया, वो तीन लाइफ टाइम इस दुनिया में जीना पड़ा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में। और जड़ भारत ने फिर कोई गलती नहीं किया, पागल की तरह रहे लेकिन भगवान पर फोकस रहे, तो जड़ भारत की जिंदगी में परिपूर्णता प्राप्त करके चले गए। तो सोचो आप कितना डिफिकल्ट है, ये मत भ्रम में रहना कि अभी तो हरे कृष्ण कर दिया हमने इस जन्म पे, अगली बार तो मनुष्य बन के आना है, नॉट नो गारंटी। मनुष्य जन्म मिलेगा आपको हरे कृष्ण करने के बाद, लेकिन बीच में कितने स्टेप्स लेना पड़ेगा कुत्ता बिल्ली और हिरण का पता नहीं। इसलिए टाइम नहीं है, समय बहुत कम है, अधिक मास आया हुआ है, 16 लक्ष बार अगर लाभ मिलने वाला है ले लो, और कहीं भटको मत इधर उधर, दिल लगाकर करो। क्योंकि तो अगर आलसी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से में आपका पूरा काम हो जाएगा इसके अंदर, थोड़े में ही। इसको बुद्धिमानी कहते हैं, आलस्य करने के बाद भी बुद्धि होगी तो आप उसका लाभ लेंगे। तो वो काम्य वन में गणेश जी को भगवान ने निवास दिया है, पूरे ब्रज में माता पिता को निवास दिया है, बाकी किसी को निवास नहीं है। ब्रह्मा जी भी एक बार भगवान का महाप्रसाद खाने को आए थे, तो क्या हुआ, तो देखा कि भगवान सब बैठे हैं यमुना किनारे में और अच्छी तरह से भोजन कर रहे हैं। उनको पता है कि उसके बाद में वो यमुना जी में हाथ धोते हैं और हाथ में कुछ लगा रहता है ना, ऐसा हमको हमारे भी होता है ना, लगा रहता है कुछ ना कुछ, तो वो हाथ धोएंगे तो यमुना जी में कुछ ना कुछ गिरेगा ना महाप्रसाद चाटा हुआ, तो मछली बनूंगा मैं और खा लूंगा उसको, तो मछली बन गए और यमुना जी में वेट कर रहे हैं भगवान के पास किनारे में जल के अंदर। भगवान गए भोजन करके अपना, सब लोग भगवान भी गए, और जैसे ही हाथ धोने लगे तो देखा कि अरे ब्रह्मा जी मछली बनकर घूम रहे हैं। उन्होंने पेड़ का पत्ते का दोना बनाया, जमुना जी का जल लिया और जमीन पर जाके हाथ धोया, नहीं मिला उसको। अभी हम लोग ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी को साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्मा को भी प्राप्ति नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा तपस्या किया, इसलिए वो ब्रह्मा रूप में नहीं पत्थर रूप में वहां पर रहते हैं बरसाने में। तो ब्रह्मा रूप में वहां पर कोई एंट्री नहीं है उनको। आप सोचो जरा कितना डिफिकल्ट है, जो हमारे लिए बड़ी आसानी से प्राप्त है वो देवताओं के लिए भी कितना डिफिकल्ट है। इंद्र एक ही बार आया था, कभी आया था, गलती करने के बाद माफी मांगने के लिए आया था बस। ब्रह्मा जी एक ही बार आए थे, वो बच्चे चुरा कर माफी मांगने के लिए एक बार आए थे। और कई वर्णन आता है क्या ब्रह्मा जी का? वो सब ब्रह्मा लोक में वैकुंठ में इधर उधर होता है, लेकिन वृंदावन धाम में नहीं है। और हम लोग आए थे वृंदावन, जाते रहते हैं, यात्रा करते हैं, रात को रहते हैं, प्रसाद खाते हैं, महाप्रसाद खाते हैं, सब खाते हैं। तो वैल्यू होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों को क्या मिल रहा है जो देवताओं को भी नहीं मिल रहा है। तो देवता बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए हमको? मनुष्य जन्म जो है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र में प्रमाण है उसका। और ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं मुझे नहीं बनना है ब्रह्मा इसके आगे, तो ब्रह्मा बन के ही प्रॉब्लम हो गया मेरा, अगले जन्म में ब्रह्मा नहीं बनना है। तीन बार तपस्या किया, एक बार माफी मांगा भगवान से, एक बार वापस जाके रोया पड़ा, कुंड बना दिया अपने आश्रमों से, उधर से भी समाधान नहीं हुआ तो एक और जगह जाके बैठे और तपस्या किया टू मेक श्योर कि अगली बार ब्रह्मा नहीं बनूंगा। तो ब्रह्मा पोस्ट है ना, तो ब्रह्मा पोस्ट लिया मैंने तो इतना गड़बड़ हो गया मेरा, इतनी बड़ा अपराध किया भगवान का मैंने। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रॉमिस लिया भगवान से, भगवान मुझे अगली बार प्रॉमिस करो कि मैं ब्रह्मा नहीं बनूंगा और बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, अच्छे कुल में जन्म नहीं लूंगा, सुंदर शरीर नहीं होगा, धनवान नहीं रहूंगा, जो जो मुझे गर्व कराएगा वो कुछ नहीं होगा मेरे पास, ऐसा जन्म दो का कोई वैल्यू नहीं होगा, नीचे कुल में जन्म दे दो। भगवान ने कहा तुम हरिदास ठाकुर बन जाओगे। तब शांत हो गए, तब वापस चले गए और अगले युग तक वेट किया। तो महाप्रभु बनकर आए कृष्ण भगवान, तो जन्म लिया, रिटायर होके चले गए, ब्रह्मा जी का पोस्ट परमानेंट छोड़ के भगवत धाम चले गए। दूसरे ब्रह्मा को भगवान ने अपॉइंट किया उधर। अगर ब्रह्मा बनने के बाद में टॉप मोस्ट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड का टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन है? ब्रह्मा है। और वो पद प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? नहीं बनना है मुझे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो खाली हुआ तो हमको मिलेगा, लेकिन आपको भी वही अनुभूति आएगी। वो बोल रहे इतना चार दिमाग, इतना सारा सॉफ्टवेयर फिट किया उसके अंदर, किसी के दिमाग में नहीं इतना, इतना नॉलेज उसके अंदर भरा हुआ है, उतना होने के बाद भी मैंने भगवान को पहचान नहीं सका तो क्या फायदा है उस इंटेलिजेंस का? ये उनका विचार है। और हमारा विचार है, हमारे पास तो एक ही ब्रेन है, उनको चार ब्रेन है, उनको भी मिलना चाहिए कभी चार ब्रेन। लेकिन जो उनको मिला है उनकी उनकी भावना क्या है वो समझना जरूरी है। और वो सुनकर आपकी बुद्धि अगर होगी अच्छी तो आप समझ में आएगा कि वो उसमें कोई दम नहीं है, वो खुद भगवान का भक्त बनना चाहते हैं और आपको ऑलरेडी मनुष्य बनकर भगवान का भक्त बनने का मौका मिला हुआ है। तो ये बात को विचार करना जरूरी है। ये सारे विचार आप केवल मनुष्य के जन्म में ही कर सकते हैं, आगे कभी जन्म बदली हो गया, शरीर बदली हो गया तो ये विचार नहीं कर सकते हैं। अभी कर लो, निश्चय कर लो, दिशा बना लो, संकल्प कर लो जो करना है। तो इसी काम में वन में एक बार कृष्ण भगवान ग्वाल बाल और गोपियां सब साथ में लीला कर रहे थे। तो गोपियों ने कहा अरे कन्हैया हमने सुना है कि तुम पिछले जन्म में राम थे। तो कन्हैया बोलते हैं कि मैं तो ग्वाल बाल हूं, मुझे क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, तो भगवान है राम। ऐसे टाल दिया उन्होंने, मैंने ऐसे बताया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ग्वाल बाल हूं, सिंपल नंद बाबा का लड़का हूं। मैंने कहा देखो देखो हमको पता है, हमने हमारे पास यकीन है इस बात का, फिर भी नहीं 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 बोलते। फिर वो एकदम गुस्सा करते हैं, बोलते आप अगर हमको आपका राम का रूप नहीं दिखाएंगे ना आपसे बात करना छोड़ देंगे हम। तो आप बोलेंगे उस बड़ी बात क्या, मत करो बात। लेकिन अगर गोपियां और ग्वाल बाल भगवान को अगर ये धमकी देते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो भगवान के लिए उससे बड़ी धमकी और कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप को डरते नहीं, वो हिरण्यकश्यप को डरते नहीं है, रावण से डरते नहीं है, लेकिन गोपी ने बोला और गोपाल ने बोला डर जाते हैं। बंद करना है क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग वापस कथा में आ जाइए। तो जब भगवान को वो धमकी दे देते हैं तो भगवान डर जाते हैं और कहते हैं सब लोग आंख बंद करो, तो सब लोग आंख बंद कर देते हैं। तो जैसे आंख खोलते हैं तो गोपियां एक जगह बैठी हुई है और श्री कृष्ण श्री राम बन गए हैं, नीले रंग के भगवान हरे रंग के राम बन गए, धनुष धारण किए हुए, बलराम जी लक्ष्मण बने हुए, सारे ग्वाल बाल बंदर बने हुए, और भगवान ऐसे आते हैं वनवाली वनवासी अवस्था में आते हैं और उधर शिवलिंग स्थापन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हाँ उस तरह से रामेश्वर धाम प्रकट हो जाता है। फिर वहां से आगे जाते हैं वानर सेना को लेकर, तो सारा समुद्र प्रकट हो जाता है वहां पर, काम्य वन के अंदर विशाल समुद्र प्रकट होता है, उसमें अपना पत्थर डाल डाल के सब आंखों के सामने कुछ ही मिनटों में सेतु बना देते हैं, और सेतु बनाकर समुद्र को पार करते करते पहुंचते हैं तो वहां से रावण प्रकट हो जाता है, श्रीलंका प्रकट हो जाती है, और भगवान राम एक बाण मारते हैं और रावण का वध कर देते हैं। मतलब रामायण शॉर्टकट जो इतना समय लगा उनको सेतु बनाने के लिए, इस लीला में कुछ ही क्षणों में सब हो गया, रामेश्वर प्रकट हो गया, वो समुद्र प्रकट हो गया, सेतु बंद प्रकट हो गया, श्रीलंका प्रकट हो गया, रावण प्रकट हो गया, रावण का वध भी हो गया। उसके बाद सब गोपियों को आवाज सुनाई पड़ी, आंखें बंद करो। तो गोपी ने आंखें बंद किया, फिर खोलो, ऐसा आवाज आया, खोली तो वापस उनके साथ में श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बाल सब खड़े, लेकिन सेतु बंद, रामेश्वर समुद्र श्रीलंका वैसे के वैसे। तो ये लीला के माध्यम से भगवान ने वहां पर ये सब प्रकट किया। और भगवान के धाम के स्थान जो है ना वो इतने सुंदर है कि वो ऐसा नहीं कि वो एक ही लीला बार बार वही वही करते रहते, अलग अलग समय अलग लीला करते रहते। प्रकट सेतु बंद नहीं करना है, लेकिन कैसे करते हैं, अगली बार जब भी और लीला किया उस समय कल्प भेद के अनुसार, तो क्या क्या लीला किया, कृष्ण भगवान स्वयं आके गोपियों पर रोप जमाने के लिए बोल रहे हैं, आपको पता है क्या, मैं ही राम हूं, मैं ही नरसिंह भगवान हूं, मैं ही वामन देव हूं, आप मुझसे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, मैं अवतारी पुरुष हूं। तो गोपिया कहते हैं, तुम कैसे अवतारी, तुम ग्वाल बाल हो, नंद बाबा के पुत्र हो, बड़ा रोग जमा रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है क्या आपको। तो भगवान ने कहा अभी दिखाता हूं, ऐसे भगवान ने करके उनको राम लक्ष्मण का रूप दिखाया। एक जगह गोपियां जिद कर रही है और राम का रूप दिखाया, एक जगह भगवान ही अपना रूप जमा रहे और राम का। एक और बार सब लोग साथ में हैं, ग्वाल बाल साथ में हैं, तो गोपियों ने रिक्वेस्ट किया आज हम ड्रामा करेंगे रामायण का। तो प्रभु रामचंद्र बन गए, बलराम जी लक्ष्मण बन गए, ग्वाल बाल बंदर का बेस बना दिया उन्होंने और सब ड्रामा किया, और ड्रामा के माध्यम से रामेश्वर समुद्र सेतु बंदर प्रकट कर दिया। ऐसे भगवान अनंत लीला करते हैं, आज भी उस जगह पर अनंत लीला चल रही है, लेकिन आज दृष्टि से समुद्र उज्जवल हो गया है, लेकिन आप जाएंगे ना आपको इतना आश्चर्य होगा, ऐसे बड़े बड़े खड़क ऐसे लाइन से बने हुए हैं जा रहे हैं आगे तक, उधर किधर भी पत्थर नहीं है, एक लाइन जा रही है वो श्रीलंका जहां पर है वहां तक, और रामेश्वर का मंदिर भी वहां पर है। जब से पहली बार जब गया था ना मैं तो हैरान हो गया था, देखिए वो इतना सुंदर दृश्य था, तो जो लीला हुई थी ना वो है उधर, ऐसा नहीं कि वैसे ही स्टोरी बनाया हुआ है, जो राम ने सेतु बनाया था ना रामेश्वर से लेकर श्रीलंका तक, वो भी सैटेलाइट के फोटो ने पिकअप किया हुआ है, वो है जब समुद्र के अंदर, प्रभु राम ने वापस आते वक्त तोड़ दिया तो वो समुद्र के अंदर चला गया, तो वो सैटेलाइट ने अभी पिकअप करके उसको प्रूव किया है, फिर भी अश्रद्धालु लोग उसको मानते नहीं है, लेकिन है सब कुछ स्थान ये जो भगवान ने किया, जहां पर नाग काटा शूर्पणखा का वो स्थान भी है, यहां पर सीता देवी देवी को अग्निदेव को सुपुर्द किया वो अग्निकुंड भी है, वहां पर त्रिदेव कुंड कपिला और गोदावरी के संगम के पास नासिक में तपोवन में है, तो श्रद्धालुओं के लिए सब कुछ है। उसी काम्य वन में भगवान ने क्या किया, एक बार नंद बाबा बोले कि हम सबको भी आदि बद्री के इधर जाना है, तो भगवान को ना कभी भी अपने ग्वाल बाल और ब्रजवासी अगर छोड़ के जाएंगे ना ब्रज तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो कह रहे क्यों जा रहे आप, उन्होंने कहा कि हमको ना बहुत उम्र तक संतान नहीं हुई थी और हमने आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आप पुत्र होगा होगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे, अभी आप हो गए आप बड़े भी हो गए, अभी तो हमारा व्रत जो किया था उसको पालन करना जरूरी है, हमको तो जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो उस समय सब लोग काम्यवन में थे, तो भगवान उनको लेके गए आगे काम्यवन के आगे और बोले आंख बंद कर लो, सबने आंख बंद कर लिया, फिर तो बोले खोलो तो खोल दिया, तो सब लोग बद्रीनाथ में थे एक ही जगह पर सब प्रकट हो गया, उधर हर की पैड़ी हरिद्वार हिमालय नर नारायण पर्वत सब प्रकट हो गया, सरस्वती गंगा सब प्रकट हो गया, तुरंत सब लोग ने अपना अपना स्थान वहां करके दर्शन किया सबका। थोड़ी देर के आगे केदारनाथ प्रकट हो गया, बहुत पास में, सबके दर्शन किए एक ही जगह पर, यहां से गंगा जी आ रहे हैं, यहां पर यमुनोत्री की यमुना आ रही है, यहां पर गंगोत्री से गंगा आ रही है, इतना पास पास में सब कुछ। इस तरह से भगवान ने ब्रज के अंदर बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हर की पेड़ी हरिद्वार ऋषिकेश सब प्रकट किया। आज सब लुप्त हो गया है लेकिन पर्वत है नर नारायण पर्वत अभी भी है, लोगों को नॉलेज नहीं है इंटरेस्ट नहीं इसलिए वो भूल जा रहे हैं, लेकिन है सब कुछ वहां पर, हम दर्शन करके आए हैं। और जब ये कोई दिव्य तीर्थ स्थान जो है वो जब ब्रज में प्रकट होते हैं ना तो उनका भी स्वरूप बदल जाता है। कैसे, भगवान का ब्रज भूमि जो है ना बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत कृपा कर देता है। एक बार जाएंगे आप श्रद्धा से यात्रा करेंगे तो दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे आप, ऐसा वरदान ब्रज भूमि में। तो ये धाम जब आते हैं ना वहां पर, तो अभी आज अगर जाना है बद्रीनाथ को आपको, तो यहां से दिल्ली वहां से 24 घंटा और वहां पर इतनी ठंड बर्फ ऑक्सीजन की कमी रास्ता खराब उल्टियां ये वो कितना कष्ट से आप पहुंचेंगे, वहां जाकर भी सुकून नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम है, दम लग सकता है आपको। और केदारनाथ को तो और चलना है, गंगोत्री में और 19 किलोमीटर वॉकिंग में जाना है, यमुनोत्री में भी चल के जाना है, ऐसा कितना कठिन है आपको वहां पहुंचने के लिए। लेकिन आप जाएंगे ना इधर ब्रज में 10 मिनट के अंदर आप केदारनाथ की चोटी पर पहुंच सकते हो, वही दर्शन है। पत्थर में आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा चट्टान है, वो नंदी है, पूरा नंदी के आकार के चट्टान है और नंदी के चार पैर के बीच में केदारनाथ का लिंग है शिवजी महाराज का, और केवल 10 मिनट में आप जा सकते हो ऊपर चढ़ के। और लाभ क्या है, केदारनाथ में जाएंगे बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको पाप पुण्य नाश हो जाएगा, बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आप ब्रज में आकर आदि बद्री केदार का दर्शन करेंगे तो ये सबके साथ आपको कृष्ण प्रेम भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, एडिशनल बेनिफिट। वही गंगा जब बहती है गंगोत्री से तो स्नान करने से आपके पाप पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो जब मायापुर में प्रवेश करती है तो श्री कृष्ण प्रेम भी साथ में देती है। वही गंगा यमुनोत्री में से आती है और पूरा घूम घूम के दिल्ली पंजाब सब करके करके नीचे आती है, वृंदावन में आती है, जैसे वृंदावन में प्रवेश करती है तो वो श्री कृष्ण प्रेम को भी साथ में देती है, आप वहां केवल पाप को नष्ट करती है, यहां पर पुण्य को भी नष्ट करती है और कृष्ण प्रेम भी देती है, एडिशनल बेनिफिट। और आसान हो जाता है पूरा, उतना चढ़ना का कष्ट जरूरत नहीं आपको। बद्री केदार में जाएंगे तो साथ में बद्री केदार दर्शन करते ही आपको श्री कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी वहां जाने की वजह से। वहां पर गया धाम में प्रकट है, गया जाते ना श्राद्ध करने के लिए, महाप्रभु चैतन्य भी गए थे वहां पर पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, बहुत सारा विधि है वहां पर, वहां शांत करने से मोक्ष प्राप्त होता है, बहुत सारा लाभ है। वो गया धाम स्वयं ब्रज में प्रकट है, और उसका महात्म्य क्या है कि आप केवल वहां जाएंगे और केवल आपके पुरखों का स्मरण करेंगे, बस केवल स्मरण, पिताजी, नानी जी, नाना जी, दादाजी, केवल श्रवण स्मरण करेंगे, केवल आपका उनका केवल उनका ध्यान पूर्वक स्मरण करने से ही उनका उद्धार हो जाएगा। श्राद्ध विधि करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो अच्छा है, स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध नहीं भी करेंगे, वहां पहुंच गए आप और इधर के उधर के सब कुल के लोगों का आपने केवल ध्यान किया, वहां पर याद किया उनको, तो भी उनका श्राद्ध पूरा होकर न केवल मोक्ष प्राप्त होता है, उनको गौलोक धाम प्राप्त होता है, इतना कृपा है उस धाम में। तो ऐसे ही यमुना जी को भगवान ने बहुत कृपा दिया, जन्म होते ही उस पर कूद पड़े भगवान, हमको लगता है गिर पड़े लेकिन वो खुद कूद पड़े, यमुना जी को उन्होंने संग दिया, अपना अंग संग दिया। तो यमुना जी का ये भाग्य क्या लीला नहीं किया भगवान ने, गंग यमुना किनारे बांसुरी सीखा, नृत्य सीखा, केशिका वध किया और पानी में कूदे, जल केली किया, गोपियों के साथ खेले, ग्वाल बाल के साथ खेले, गायों के साथ खेले, यमुना जी ने तो परमानेंट संग दिया उनको। तो यमुना जी से गंगा जी बोलती है कि आपको इतना भाग्य प्राप्त है, मुझे भी कुछ भाग्य दो। तो यमुना जी ने भगवान से फिर विनती किया कि मेरी बड़ी बहन गंगा जी भी आपको विनती करती है कि आपका संग उनको मिले, तो अगले जन्म में मिलेगा ऐसा वादा किया, लेकिन उनको इसी जन्म में चाहिए था, कृष्ण के जन्म में। तो भगवान ने एक और लीला रचाया गंगा जी को अपना कृपा देने के लिए। क्या लीला रचाया, नंद बाबा बैठकर एक बार कथा सुन रहे थे गंगा जी का महिमा, तो गंगा जी का महिमा सुन रहे हैं, तो कथाकार बता रहे हैं कि गंगा जी इतनी पवित्र है कि एक बार गरुड़ जी ने सांप को पकड़ा खाने के लिए और उसको उड़ाकर ले जा रहे थे वो, तो गंगा जी के ऊपर से उड़ते उड़ते थोड़ा नीचे आ गए, मतलब ऊपर से नीचे आ गए, तो वो सांप की पूंछ, जो सांप गरुड़ जी के हाथ में था उसकी पूंछ को गंगा जी का जल स्पर्श हो गया और तुरंत वो सांप का रूपांतर चतुर्भुज विष्णु के दूत वैकुंठवासी के रूप में हो गया, हाथ में सांप है वैसा दोरी की तरह, अचानक वो ऐसे हो जाता है, चार भुजा वाला पीताम्बर धारण किया हुआ चतुर्भुज विष्णु दूत वैकुंठवासी शरीर प्राप्त हो गया उसको। तो गरुड़ का अचानक आश्चर्य हो गया, देखा तो अरे वो तो मुक्त हो गया जीव, वैकुंठवासी हो गया, उसको कंधे पर रखा और वैकुंठ ले गए वो। और ये कथा नंद बाबा और सब ग्वाल बाल बैठ के सुन रहे हैं, तो जैसे ही ये सुना ना तो नंद बाबा तुरंत खड़े हो गए, तो अब भी जाना है गंगा को, अब भी कभी गंगा जाना है। फिर वही बात, कन्हैया को अच्छा नहीं लगा, क्यों जा रहे हैं ब्रज छोड़ के आप, नहीं नहीं बेटा गंगा जी का महिमा सुना नहीं आपने, इतनी गंगा पवित्र है, हमको तुरंत जाना चाहिए, सब लोग बड़े ग्वाल बाल भी तैयार हो गए, राजा बोल रहे तुरंत तैयार हो गए जाने लगे, तो बोला रुको 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 आप मेरे साथ आओ, तुम बेटे के बाल तार नहीं सकते वो, क्योंकि बेटा कृष्ण है, उनके इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो सारे बड़े ग्वाल बाल, सारे गोपियां, सारे माताएं सब जा रहे हैं, कहां जी लेके जा रहे भैया तू, चलो मेरे पीछे। तो गोवर्धन के बीच में लेके जाते हैं उनको एकदम सेंटर में, और वहां पर गंगा जी को आह्वान करते हैं, हाँ इतना सा बालक बीच में खड़ा है, सब लोग खड़े है, और इसमें से इसके हृदय में से गंगा देवी निकलती हुई सबको नजर आती है, हृदय से निकल होकर उनके सामने ऐसे प्रकट हो जाती है, मगरमच्छ में बैठी हुई चार भुजा वाली गंगा देवी सबके सामने प्रकट होती है, वो भी देख रहे हमारे कन्हैया के हृदय से प्रकट हो गई वो, और हाथ जोड़ के बोल रहे महाराज भगवान क्या आदेश है मेरे लिए, वो तो धंक रहे थे, अरे बाप रे जिनके पास जाकर हमको स्नान करने का प्लान था वो ही स्वयं यहां प्रकट होकर पूछ रही है हमारे बालक को, महाराज भगवान क्या करे आदेश आपके लिए, क्या आदेश है आपका। भगवान भी भाई वक्त आदेश दे रहे हैं आपके जल को यहां प्रकट करो, ये सब ब्रजवासी हम स्नान करेंगे उसके अंदर। तो सबके आंखों के सामने गंगा जी वहां पर मगरमच्छ पर बैठकर अपने जल को वहां प्रकट करती है और सागर जैसा विशाल कुंड तैयार होता है, जो आज भी ब्रज का सबसे बड़ा कुंड है, सागर की तरह विशाल कुंड पैदा होता है, और तुरंत सब लोग ग्वाल बाल कपड़े उतार कर तुरंत स्नान करते हैं गंगा जी में। इस तरह से भगवान ने इस लीला के माध्यम से गंगा जी को वहां पर प्रकट कराया, प्रकट कराया थोड़ी वहां पर छोड़ देंगे उसको, वहां पर उन्होंने अनंत लीला किया उसके बाद में। नौका विहार किया, नौका विहार का स्थान बनाया उसके लिए। तो क्या कैसा किया, अभी जल तो पैदा हो गया, सबने स्नान किया तो गंगा जी का स्थान मिला, ब्रज में निवास मिला, प्रसन्न हो गई वो, मुझे भी ब्रज में स्थान मिला, सारे धाम आकर बैठे मुझे भी स्थान दो, तो मुझे मिल गया स्थान। तो एक बार ग्वाल बाल अपनी गोपियां जो है ना वो अपने मक्खन दूध दही लेकर जाते थे और बीच में गोवर्धन पार करते थे घाटियों से, घाटी मतलब क्या, रास्ता पार करने के लिए। तो अभी बीच में बड़ा वो आ गया ना, जलाशय हो गया, बोट से जाना पड़ता है, तो वहां तक आते थे, फिर बोट से पार करके फिर मथुरा जाते थे। तो एक दिन आए सब लोग अपना मक्खन वक्खन लेके बे मटके में, देखा तो कोई है ही नहीं बोट वाला, देर हो रही थी अभी और कोई भी बोट नहीं है उधर। बोट ढूंढ ढूंढ के एक टूटी फूटी बोट और एक बुड्ढा नाविक मिलता है उनको, तुरंत उसको बोलते हैं चलो कितना लोगे, ये को बहुत झिकझिक करता है, नहीं मैं थका हूं, ऐसा हूं, नहीं टाइम नहीं है, बोट खराब है अच्छे वगैरह, नहीं नहीं मुझे जाना ही है। उसको वो अच्छी तरह समझाते हैं तो क्या होगा, तो एक एक मटका भर के आपको, एक मटका हमारा दे देंगे आपको किराया, ठीक है। सब लोग बैठ जाते हैं बोट में, वो बोट चालू करता है। कुछ देर बाद पानी के बीच में आता है, बोलता है अभी मैं बहुत भूख लग रही है मुझे, मेरा वो बख्शिश दे दो पहले से। तो बोलता अभी तो पहुंचा है नहीं आपने, मतलब मत तो फिर, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं इधर ही रुक सो जाऊंगा, भूख लग रही है अभी क्या करूं, जाना तो है। तो उसको पहले से ही उसको दे देते हैं मटका, तो अच्छी तरह से मटका भर के मक्खन खाता है और चलाने लगता है, तो फिर रोक लेता है, बोलता है अभी मुझे नींद आ रही है, इतना पेट भर के मक्खन खाया तो नींद आ रही है, अभी क्या करें, अभी हेल्पलेस ना, अभी आप समझो बीच रास्ते में वो परदेश में हो तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तो सो जाता है और गोपियों को बोलता है कि दो लड़कियां मेरे पैर पे लग जाओ, दो हाथ पे लग जाओ, थोड़ा मालिश करो, थोड़ा अच्छा रहेगा, जरा मतलब तो एक तमाचा लगाएंगे तो तेरा, हाँ ठीक है देखिए, फिर मैं अकेला सोता हूँ। सो जाता है, फिर कुछ देर बाद उठ जाता है, जब तक गोपियां बैठी हुई, उठ जाता है, बोलते वापस चालू करता है, थोड़ा आगे जाता है और बोलता है कि बोट आगे नहीं जा सकती, वो कैसे वृंदावन होता है ना, वो बस बोलेगा बस वाला इसके आगे बस नहीं जाएगा, आपको उतर के चढ़ाना पड़ेगा। आप एवं क्या बोले, बोले क्यों नहीं जाएगी, बोलते वजन बढ़ गया है बोट का, देखो 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 पानी आ रहा है, देखो पानी आ रहा है, अभी क्या करेंगे, बोलेंगे इतने सारे मटके तुम्हारे वजनदार मटके हैं, अगर तुमको बचना है जिंदगी के लिए, आगे भी बिजनेस करते रहोगे मथुरा में जाके, अभी आपको बचना है तो ये सारे मटके फेंक दो। तो इतना कीमती मक्खन जो बना के बेचने जा रही है वो सारा जिंदगी बचाने के लिए डाल लेते हैं। तो आप ही थोड़ा हल्का हो गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, थोड़ा आगे बढ़ने में बोलते कि अभी बीमारी है, अभी क्या करे, तो इतने गहने पहनकर घूम रहे हो आप लोग, सब लोग इतने भारी भारी गहने, कितना वजन है उसका, तो सब उतार के फेंकना पड़ेगा। तो सब अपना गोपियां इतनी सिंपल सब उतारती है, वो सब मानसी गंगा में फेंक देती है, फिर वो आगे चलता है, बोलते तो अभी भी भारी है, तो बोलते अभी ना आप पे उठा के फेंक देंगे तो वजन कम हो जाएगा, तो फिर चलाने लगता है। अब ये सब कुछ ना, वस्त्र, अब आज बोलते हैं कि वस्त्र उतार दो तो बहुत गुस्सा करते हैं, बोल तमाचा मारेंगे आपको, तो शांत हो जाता है। मतलब क्या है ना, सारा त्याग करवा रहे हैं, मक्खन दही वो त्याग करा दिया, धन त्याग करा दिया, सब कुछ अलंकार उतार दिया, सब कुछ कर दिया, अभी बचा नहीं कुछ ना। अचानक आंधी तूफान आ जाता है बहुत जोरदार, पर कैसे आया अचानक, एकदम काला काला बादल आ गया, पूरा हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी और जोरदार वर्षा शुरू हो गई, एकदम अचानक अंधेरा हो गया। तो ये जो है ना राधा रानी जाकर वो डर के उस बोटमैन को ही गले लगाती है, तो उसे डर के मारे, तो पहचान लेती है कि यही कृष्ण है, भेष बदल कर लीला कर रहा है, क्योंकि तो वो जब उसको गले लगाती है ना तो उसको कहीं ना कहीं इधर मुड़ी लगती है और इधर मोरपंख दिखाई पड़ता है पेटे के अंदर, तो सब उसका छीन उतार लेते हैं, बोले अरे कन्हैया तुम नाटक कर रहे हो, बोले आपको आज एकांत रूप में मुझे नौका विहार कराने का मन था, इससे मैंने सबको लीला करवाया, और वो भगवान की लीला अगर हमको अनुभव करना है तो सारे अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ देना पड़ेगा, सब छुड़वा दिया पूरा। और फिर उन्होंने उनके साथ में नौका विहार शुरू किया, वो टूटी फूटी नाव थी ना तो एकदम रत्नों से भरी हुई नाव बन गई, विशाल चमकदार एकदम, सब गोपियां एकदम वापस अलंकृत हो गई, अरे अलंकार वापस पैदा हो गए, भगवान भी सुशोभित हो गए, और उन्होंने रात भर वहां पर नौका विहार किया, गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य बजाते हुए, भोजन करते हुए। और आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्मा की एक रात तक उन्होंने वहां पर नौका विहार किया, लेकिन जब दिन हुआ तो इस दुनिया का एक ही दिन चेंज हो गया। इस विश्व की एक रात में ब्रह्मा जी की एक रात का समय उन्होंने समेट लिया, और ब्रह्मा जी के एक रात तक, पता है कितना साल होता है वो, 432 कोटि साल, 432 करोड़ ऑफ इयर्स हमारे, इतना समय उन्होंने गोपियों के साथ में नौका विहार किया, ऐसा है मानसरोवर मानसी गंगा। और उसमें हरिदेव जी का मंदिर है, वहां पर भगवान ने जब पर्वत उठाया था ना, तो वो उनका स्वरूप था ना, वो उधर प्रकट है बज्रनाभ की कृपा से। बज्रनाभ ने वो विग्रह बनाया और वहां स्थापन किया, मानसी गंगा के किनारे में है। उधर मनसा देवी भी है, पार्वती देवी मनसा देवी बनकर वहां बैठी हुई है, भगवान के मन से प्रकट हुई, इसलिए वो मानसी गंगा है। बहुत पवित्र स्थान है, सब दुखों को दूर करने वाला है और भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कराने वाला स्थान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्री कृष्ण भगवान की। ऐसे भगवान की अनंत लीलाएं हैं, कहां तक सुनेंगे आप, रात भर बैठे के समाप्त नहीं होगी, सात दिन बैठे के समाप्त नहीं होगी। हम तो परीक्षित महाराज तो है नहीं, हमको भूख भी लगती है, नींद भी आती है, बीच में बहुत सारा ब्रेक लेना पड़ता है, लेकिन इतना जो बताया है उस पर भी चिंतन करेंगे तो भी काफी है। क्या क्या बताया आज बताओ, क्या क्या बताया,